दक्षिणी दिल्ली के शांत और हरे भरे इलाके में सांझ पसरने लगी है। दिल्ली का ये वो इलाका है जहां ऑडी और बीएमडब्ल्यू जैसी गाड़ियों की भरमार है। ओबराय होटल के सामने खड़े होकर आप ये अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि व्यस्त फ्लाईओवर के पार संकरे रास्तों और गलियों से थोड़ी ही दूर मध्यकाल का एक शहर आज भी आबाद है।
यहाँ है खुशहाल और आबाद शहर, जिसके हर मोड़ पर चांद ने अपनी किरणें बिखेरी हैं और हर किरण में गुथी हुई मेरे टूटे दिल की एक फांक झिलमिला रही है।
सड़कें तंग हो चली हैं, जैसे भूल भुलैया हो। हम एक भीड़ भाड़ वाली जगह में पहुंच गए हैं। ऐसा लगता है जैसे हम किसी सुरंग से होकर आगे बढ़ रहे हैं। दुकानों पर नमाजी टोपियां, चादरें, कबाब और गुलाब की कलियां बिक रही हैं। और जैसे जैसे हरा मेहराबदार रास्ता करीब आ रहा है, हमारी रफ्तार बढ़ गई है। ये रास्ता हमें महान शायर अमीर खुसरो की दरगाह तक ले जाएगा, जो नक्काशीदार स्तंभों और जालीदार खिड़कियों से घिरी हुई है। हर बृहस्पतिवार को इस सूफी मुस्लिम की दरगाह के पास फिरोजी कुर्तों में दमकते, उंगलियों में चमकीले जवाहरात पहने कव्वाल अमीर खुसरो के नाम से मशहूर कव्वालियां पेश करते हैं। और तब 13वीं सदी की दिल्ली के इस शायर की दुनिया जैसे आबाद हो उठती है और लगता है दक्षिणी दिल्ली के शानदार रेस्तरां, महंगे हैंडबैग्स की दुकानें और पाश्चात्य संगीत की सीडी बेचने वाली दुकानें यहां से कोसों दूर हैं। फारसी में लिखी गई या हिंदवी की मौखिक परंपरा में जीवित खुसरो की सूफी रचनाएं आज की उर्दू शायरी का शुरुआती रूप हैं। सूफी इस्लाम और हिंदू संस्कृति का ऐसा अद्भुत और कलात्मक समायोजन है कि आधुनिक भारत के निर्माता उन्हें सांस्कृतिक समन्वय का प्रतीक मानते हैं। लेकिन खुसरो की काव्य शैली महज हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों के मतभेदों को मिटाकर उनके मेल मिलाप की ही नहीं है, बल्कि इसमें परंपराओं का समावेश है। और इसीलिए उनकी मजार उस शहर में है जिसे वो बेइंतहा मोहब्बत करते थे और जहां आज भी तमाम मतावलंबियों का तांता लगा रहता है। कहते हैं मुगल बादशाह जहांगीर खुसरो के कलाम में मौजूद व्यंजनाओं के बारे में एक चुटकुला सुनाया करते थे। वो कहते थे, जब एक दरबारी गायक ने खुसरो से एक गजल के मायने समझाने को कहा तो बेचारे समझाते समझाते पस्त हो गए। खुसरो की रचनाओं में अर्थ परत दर परत खुलता है और संदर्भ बदलते रहते हैं। अपने कलाम की तरह ही खुद खुसरो भी सांस्कृतिक, भाषाई और सामाजिक कौशल के नायाब नमूने थे। अमीर खुसरो अपने आप को तूतीय हिंद यानी हिंदुस्तान का तोता कहते थे, जो भारत की विविधता के कारण खुद एक बहुअर्थी उपाधि है। खुसरो ने अपने लंबे जीवन के दौरान कई भूमिकाएं सफलतापूर्वक निभाई। खुसरो एक योद्धा, दरबारी गायक और सूफी भक्त तो थे ही, लेकिन इस सबसे बढ़कर वो हाजिर जवाब साहित्यिक प्राणी थे। सभी आश्रयदाताओं और कद्रदानों की रुचियों को समझने और सूफीवाद में विश्वास की वजह से ही उनका कलाम आज 700 साल बाद भी जिंदा है। गजलकार जावेद अख्तर।
हियर इज एन इंटेलेक्चुअल जायंट विद सच मल्टीफेसेटेड पर्सनालिटी।
खुसरो प्रतिभाशाली, बुद्धिजीवी और बहुआयामी व्यक्तित्व के मालिक थे। सूफी काव्य की अवधारणा, बोलियों और उर्दू भाषा के मेल का विचार, इन सब की शुरुआत खुसरो ने ही की थी और आज इनको हमने इस कदर अपना लिया है कि हमें याद भी नहीं रहता कि हम कब अनायास ही इनका इस्तेमाल कर रहे हैं।
खुसरो की रचनाओं से हमें पता चलता है कि उनके पिता मध्य एशिया के तुर्क इलाके से आए थे और शायद गुलाम थे। उनकी माँ हिंदू थी जिन्होंने उनके पिता से शादी के बाद इस्लाम अपना लिया था। विवाह के 10 साल बाद जब उनके पिता लड़ाई में मारे गए तो उनकी माँ ने बचपन में ही सयाने हो गए अपने दूसरे बेटे यानी खुसरो को 8 साल की उम्र में उसके अमीर दादा के पास रहने के लिए भेज दिया। कहते हैं तभी उनकी मुलाकात उस शख्स से हुई जिसने बाद में उनकी जिंदगी बदल दी। इतिहास के प्रोफेसर नील ग्रीन कहते हैं,
अमीर खुसरो मीट्स निजामुद्दीन औलिया व्हेन ही इज अ चाइल्ड।
कहा जाता है कि अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया से बचपन में मिले और ये मशहूर है कि तभी बाल शिष्य खुसरो ने, मैं कहूंगा कि मध्ययुगीन फारसी मोजार्ट की तरह, निजामुद्दीन से कहा, بلکہ ان کے لیے یہ شعر پڑھا کہ آپ وہ شہنشاہ ہیں کہ جس کی محل کی چھت پہ کبوتر بھی بیٹھے تو باز بن جائے. On the roof of his palace, it
will become a hawk. بھارت کی صوفی مسلم پرمپرا کے مہان سنت نظام الدین اولیاء کا جنم اسی علاقے میں ہوا تھا جہاں خسرو کے پتا تھے. قصے کہانیوں میں مشہور یہ ملاقات ساہتیہ کے اتہاس میں خسرو کی جگہ پکی کرنے میں مددگار تو ہوئی، لیکن اس سے پہلے خسرو کو لڑائیاں لڑنی تھی، قید جھیلنی تھی، شراب کے نشے میں چور ہونا تھا، اور شاہی دربار کے کوی کے روپ میں بے مثال شہرت کا جیون جینا تھا. خسرو نے کم عمر سے ہی لکھنا شروع کر دیا، لیکن آجیوکا کے لیے وہ اپنے پتا کی راہ چلے اور مسلم شاسکوں کی اور سے یدھ کا پیشہ اپنایا. خسرو نے منگولوں کے خلاف اور اسلام کے وستار کے لیے کئی ابھیانوں میں حصہ لیا، پکڑے بھی گئے، دشمنوں کی قید میں بھی رہے، لیکن آخرکار وہ قید سے نکل بھاگے اور دلی واپس لوٹ آئے. دلی میں وہ سینک سے کوی بن گئے اور اپنی پاروارک جان پہچان کا استعمال کر شاہی مجلس تک پہنچ بنا لی، جہاں سنگیتکیوں اور نوجوان لڑکوں کی صحبت میں شاعر لوگ آشو کویتا کرتے، ایک دوسرے سے پرتسپردھا کرتے تھے.
ان مقدس ہندو لڑکوں نے برباد کیا ہے، پلائی ہے مجھے، ان گیسوں کے پیچ و خم میں قید خسرو تابیدار ہو جیسے.
نیل گرین کہتے ہیں،
The king and his closest other companions gathering round, no doubt drinking wine, a great deal of wine.
سلطان اور ان کے نزدیکی ساتھی مل بیٹھتے، میکشی کے دور چلتے، شراب امیر خسرو اور اس زمانے کے اور فارسی کویوں کے کاوے کا پرمکھ وشے تھا. سلطان یا کوئی اور قدردان محفل میں شراب کے جام پیتے ہوئے، سنگیت سنتے ہوئے، امیر خسرو یا کسی اور ساتھی سے کسی وشے پر چند اشعار سنانے کو کہتے، جیسے یہاں بیٹھے اس خوبصورت لڑکے کے گالوں پہ جو تل ہے اس پر کچھ سنائیے. تو وہ ترنت کوئی کویتا بناتے اور سنا دیتے، اور اگر مصرع اچھا ہوتا، کوئی بڑھیا سا شعر ہوتا، تو سلطان شاعر کی طرف ایک یا دو سونے کے سکے اچھال دیتا.
خسرو جس دور میں راج گھرانوں کے دل جوئی کر رہے تھے، وہ دلی کے اتہاس میں بے حد اتھل پتھل والا دور تھا. ان کے پرول جیون میں پانچ سلطان گدی نشین ہوئے اور برباد ہوئے. وہ ایک کے بعد ایک آشرے داتا کی شان میں قصیدے پڑھ رہے تھے، اور اس لیے بڑے سے بڑے دربار کا حصہ بنتے چلے گئے. جس آخری دربار کا وہ حصہ تھے، اس کا کیندر یہی تغلق آباد میں تھا. تغلق آباد جو کبھی قلعے کی چہار دیواری میں بسا ایک شاندار شہر تھا، اور آج آدھونک دلی کے بے قاعدہ پھیلاؤ میں سما گیا ہے. ان درباروں میں دشمنی، دھوکھا اور ہتیاؤں کا زور تھا، جو کسی بھی سرجنشیل مانس کے لیے بہت اچھا ماحول تو نہیں تھا. پھر بھی خسرو نتی نئے پریوگ کرتے رہے اور اپنے کلام میں نیاپن لاتے رہے. جلد ہی وہ اپنے وقت کے سب سے پسندیدہ درباری شاعر بن گئے، لیکن وہ خود کو سنرکشکوں کے چرنوں کا غلام کہہ رہے تھے، ان کی جوٹھن پر زندگی گزارنے کا ذکر کر رہے تھے. توتیے ہند امیر تھے، بے حد پرسدھ تھے، لیکن ظاہرانہ طور پر اوزاد کا شکار بھی تھے.
قصیدوں میں روح کہاں ہوتی ہے، الفاظ و انداز کتنا ہی نیا ہو، حسین ہو.
حالانکہ درگاہ میں امیر خسرو کی بھی قبر ہے، لیکن پوری درگاہ انہیں نہیں بلکہ اس شخص کو سمرپت ہے جو ان کے بغل میں دفن ہے، نظام الدین. وہی شخص جو خسرو کو بچپن میں ان کے دادا کے گھر میں ملے تھے. جب خسرو 50 سال کے ہوئے تو روحانی طاقت کے لیے نظام الدین کی شرن میں گئے. صوفی سنت کی اپنی خانقاہ تھی، ایک طرح کا سمانانتر دربار جو دلی کی سیما پر بسے گیاس پور میں تھی، اور ان کے شاگردوں میں کئی کلاکار اور بدھ جیوی تھے جو محلوں کی راجنیتی سے پناہ چاہتے تھے. یہیں نظام الدین کے ساتھ خسرو کو استھائی سکون ملا. نیل گرین کہتے ہیں،
I can't help but think that it's really the stress of that environment that drove Amir Khusro.
میں سمجھتا ہوں کہ اس ماحول کا جو تناؤ خسرو جھیل رہے تھے، کوی کے روپ میں نہیں بلکہ ایک ایسے عام انسان کے ناطے جو دربار میں اپنا کام کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اسی نے انہیں صوفی ماحول کے ایکانت سکون اور سہانوبھوتی کی اور کھینچا. اور یہ تو ہم پکے طور پر جانتے ہی ہیں کہ 50 سال کی عمر میں وہ اپنا زیادہ وقت نظام الدین اولیاء کے ساتھ بتا رہے تھے.
خسرو کے جیون کال میں بھارت میں صوفی واد خوب پھلا پھولا. सूफीवाद ईश्वर से रहस्यात्मक एकात्मकता में यकीन रखता है। सूफीवाद के विभिन्न चरण और रहस्य किताबों से नहीं सीखे जा सकते, बल्कि आध्यात्मिक गुरु के नजदीक रहकर ही जाने जा सकते हैं। अब खुसरो खुद को ज्यादातर तुर्की हिंदी, भारतीय तुर्क कहते थे, जो इस बात का इशारा है कि उनके गुरु और उनकी जो साझी विरासत थी वो उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई थी। अब उनकी रचनाओं में सूफी समर्पण का आदर्श, गुरु और शिष्य की पहचान एक हो जाना नजर आने लगा था और उनके कुछ गीतों में गुरु से उनके संबंधों में एक तरह की समानता, गहरी दोस्ती का भाव भी मिलता है, जिसकी सुल्तानों के साथ संबंधों में कल्पना भी नहीं की जा सकती थी।
मैं तू हो गया, तू मैं हो गया, मैं जान हूं तू बदन मेरा, अब से कोई कह न सके कि तू जुदा और मैं जुदा।
अल्लाहु अकबर। सी हाले मिस्किन मकुन तकफ दोराए नैना।
लेकिन खुसरो की सूफी काव्य रचनाओं या उनके फारसी कलाम से ज्यादा मशहूर हैं उनके गीत और उनके नाम से मशहूर कव्वालियां और गजलें, जो पिछले 700 सालों से भारत की मौखिक परंपरा में जीवित हैं और आज भी उनकी मजार पर गाई बजाई जाती हैं। भारत की आजादी के बाद के वर्षों में इनमें से कई गीत भारतीय सिनेमा ने भी अपनाए और पूरे उत्तरी भारत में आज भी लोग सुकून के लिए अमीर खुसरो के गीतों का उदासी पूर्ण सौंदर्य पसंद करते हैं।
हमेशा की रिया बेइश्क आमा नानी।
मजे की बात यह है कि इनमें से कई गीत सचमुच खुसरो ने नहीं लिखे होंगे, लेकिन फिर भी खुसरो देश के अनौपचारिक आदर्श वाक्य, विविधता में एकता का प्रतीक बन गए हैं। जब गांधी ने हिंदू मुस्लिम संगीतकारों को एक साथ गाते बजाते सुना तो उन्होंने पूछा था, और मामलों में ऐसा भाईचारा कब देखने को मिलेगा? लेकिन खुसरो ने जिस सांस्कृतिक एकता और मेल की प्रेरणा दी थी, आज कई सत्ताधीशों को वो एक भ्रम, गैर जरूरी एहसास लगने लगा है। और मुझे फिर याद आता है मतभेदों से निपटने का खुसरो का कौशल। और जैसे जैसे मैं इस मध्ययुगीन दरगाह से दूर आता जा रहा हूँ, दिल्ली के नए इलाकों में लौट रहा हूँ, इस शहर की सभ्यता में खुसरो का भरोसा भी याद आ रहा है। जब उन्होंने कहा था कि अगर यहाँ कोई खोरासानी, यूनानी या अरब आए तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ लोग उससे प्यार से, अपनेपन से पेश आएंगे, ताकि वो चैन से रहें और खुश रहें।